नमस्कार भारत, तारीख 11 जून, दिन गुरुवार। मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। इराक पर अमेरिका का अहम फैसला, भेजेंगे और सैन्य प्रशिक्षक इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जारी जंग में।
President and his team are confident that for now, 450 troops additional।
म्यांमार में हुई भारतीय सेना की कार्रवाई पर आ सकता है एक दिलचस्प मोड़। जानेंगे क्यों बढ़ रही हैं आम आदमी पार्टी की अंदरूनी मुश्किलें। और अगर आप भी फिल्मों में काम चाहते हैं तो अब एक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराइए खुद को।
की बहुत सख्त जरूरत है, अच्छा टैलेंट अवेलेबल है, हो सकता है मेरे बाजू वाले घर में हो, बट मुझे नहीं पता उसके बारे में। वो उन लोगों का जो बेस्ट टैलेंट है उसे ला रहे हैं।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, फैसल मोहम्मद अली से। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 450 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को इराक भेजने की इजाज़त दे दी है। ये सैनिक इस्लामिक स्टेट से लड़ रही फौज को ट्रेनिंग देंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति ने इराकी सेना, पेशमेरगा और कबायली लड़ाकों के लिए हथियार और दूसरे ज़रूरी सामान जल्द से जल्द भेजने का भी हुक्म दिया है। अमरीकी फ़ौज अतिरिक्त प्रशिक्षकों को अपने 5वें ट्रेनिंग कैंप में बहाल करेगी और उसे उम्मीद है कि यह रणनीति IS को सुन्नी बाहुल वाले पश्चिम क्षेत्र से निकालने में मददगार होगी। पोप फ्रांसिस वेटिकन में एक नया विभाग बनाने जा रहे हैं जो उन मामलों की देखभाल करेगा जिनमें बिशप बाल यौन शोषण के मामलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। वेटिकन के प्रवक्ता फेडरिक लोम्बार्डी ने कहा कि जिन बिशप ने ऐसे मामलों की अनदेखी की है उन्हें सजा देने के लिए एक प्रक्रिया की स्थापना की जा रही है। हालांकि अमरीका में ऐसे शोषण के शिकार हुए लोगों के एक समूह का कहना है कि अफसरशाही की स्थापना का एक और नमूना है। लेकिन मेरी कॉलिंस नाम की एक महिला का कहना था, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो खुद इसका शिकार हो चुका हो, मैं जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग करती रही हूँ। सालों तक ऐसा होता रहा है कि चर्च के नेताओं की जिम्मेदारी तय किए जाने का कोई तरीका नहीं रहा है। ऐसे मामले जिसे उन्होंने छुपाने की कोशिश की हो, जिसमें उन्होंने ऐसा करने वालों को बचाने की कोशिश की हो, यौन शोषण का शिकार हुई एक औरत के शब्द। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि शांति सेना नियमित रूप से लोगों को सेक्स के लिए मजबूर करती है जिसके बदले वो उन्हें छोटे मोटे सामान मुहैया करवा देती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हाथ लगी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के मामले अफ्रीकी देश हेती और लाइबेरिया के संदर्भ में सामने आए हैं जहाँ भूख और गरीबी की मार झेल रही औरतें सामान के बदले शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर की गई थीं। साल 2008 से 2013 के बीच ही कम से कम 480 ऐसे मामलों का जिक्र इस मसौदे में है जिनमें से एक तिहाई पीड़ित कम उम्र के किशोर थे। भारत की ओर से पाकिस्तान में भी म्यांमार की तर्ज पर फौजी कार्रवाई करने के बयान पर पाकिस्तानी गृह मंत्री चौधरी निसार ने कहा है कि भारत को किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान म्यांमार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद भारत के बयान को निराशाजनक और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ बताया गया। भारतीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कल कहा था कि भारतीय फौज ने म्यांमार में जिस तरह की कार्रवाई की है वो उन सभी देशों के लिए एक संदेश है जहां से भारत विरोधी गतिविधियों का संचालन होता है। उन्होंने इस संदर्भ में पाकिस्तान का भी नाम लिया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीकी सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत इराक में 450 और सैन्य प्रशिक्षक भेजने की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यालय के अनुसार ये लोग इस्लामिक स्टेट से लोहा ले रहे इराकी सैनिकों को प्रशिक्षण देंगे। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जोश अर्नेस ने एक बयान में बताया,
President and his team are confident that for now, 450 troops, additional military personnel are what is necessary.
अगर लंबे समय की बात की जाए तो हमें इराक में एक मजबूत स्थानीय सुरक्षा प्रणाली को स्थापित करना ही होगा। फिलहाल इतने सैनिकों को भेजने के लिए राष्ट्रपति ओबामा आश्वस्त हैं, लेकिन आखिरकार इराकियों को अपनी व्यवस्थाएं मजबूत करनी होंगी। ये थे व्हाइट हाउस प्रवक्ता के शब्द। इस बीच इस अहम बताए जा रहे इस फैसले को इराक के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुआफक अल रुबाई ने आधा अधूरा बताया है। उनका कहना है कि यह बहुत देर से लिया गया फैसला है और अमेरिका को अब इराक के बारे में एक समग्र रणनीति बनाने की आवश्यकता है। अब से कुछ ही देर पहले मैंने वॉशिंगटन में अपने सहयोगी ब्रजेश उपाध्याय से बात करके इस नई घोषणा पर विस्तार से बात की।
देखिए, व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि इस वक्त चार जगहों पर अमेरिकी सैनिक इराकियों को प्रशिक्षण और सलाह देने का काम कर रहे हैं। अब एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम पूर्वी अनवार प्रांत के तकद्दुम फौजी अड्डे पर शुरू किया जाएगा, तो कुल अमेरिकी सैनिकों की तादाद लगभग 3,500 हो जाएगी। इस नए कार्यक्रम में सबसे ज्यादा कोशिश होगी स्थानीय सुन्नी कबायलियों को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ खड़ा करना और जैसी जरूरत हो उस हिसाब से उन्हें प्रशिक्षित करना। तीसरी बात, इराकी फौज और इन सुन्नी लड़ाकों को भी हथियार मुहैया करवाने में तेजी लाई जाएगी। जो विदेशी लड़ाके आईसिस का साथ देने के लिए इराक और सीरिया की सीमाओं में घुस रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिशें तेज होंगी। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 180 अमरीकी हैं जो इस्लामिक स्टेट का साथ दे रहे हैं और ऐसे यूरोपीय लड़ाकों की तादाद तो हजारों में है। और इस नई या कह लें कि मॉडिफाइड रणनीति में रमादी और फलूजा पर जल्द से जल्द इराकियों का कब्जा स्थापित करने की कोशिश होगी। और वहीं पेंटागन का कहना था कि सभी 450 अमरीकी सैनिकों को अनबार तक पहुंचाने में लगभग 6 से 8 हफ्ते लगेंगे।
ये बताएं कि इस तमाम चीजें जो आपने बताई इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इशारा साफ मिल रहा है कि क्या अभी तक की जो अमरीकी रणनीति थी वो बिल्कुल काम नहीं की और एक नए सिरे से पूरी कवायद फिर से की जा रही है।
देखिए, जाहिर है कि अब तक की जो रणनीति थी वो कारगर नहीं हुई और विश्लेषकों का कहना है कि जब रमादी पर आईसिस का कब्जा हुआ तो अमरीकी रक्षा मंत्री ने कहा कि इराकियों में युद्ध करने की इच्छा शक्ति ही नहीं थी, तो उससे ये बात काफी हद तक और सामने आई। तो कुल मिलाकर विश्लेषकों का यही कहना है कि एक जिसे हम कहते हैं ना डिसजॉइंटेड सी रणनीति रही है और वो कामयाब नहीं हुई है।
जी ब्रजेश, एक आखिरी सवाल कि वहाँ अमेरिका में इस फैसले को किस तरह से देखा जा रहा है, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की?
देखिए, जिस तरह के संकेत मिले हैं खासतौर से कि क्या ये 450 की जो बढ़ोतरी है वो काफी होगी, तो फौजी अधिकारियों की तरफ से जो मीडिया को दिए गए बयान है जिसमें उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है उनसे ये लगता है कि ये संख्या काफी नहीं है। दूसरी बात है कि पहली बार इन अमरीकी सैनिकों को आईसिस के गढ़ के इतने करीब तैनात किया जा रहा है, सो लगभग आप कह सकते हैं एक तरह का फ्रंट लाइन होगा, तो उन पर खतरा और बढ़ेगा। और सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये संख्या काफी होगी उनकी अपनी ही सुरक्षा के लिए। तीसरी बात जो निकल कर आई है कई बयानों में वो ये कि प्रशिक्षक तो है लेकिन सीखने वाले नहीं है, यानी इराकी फौज में नए सुन्नी सैनिक नहीं आ रहे हैं, तो वहां चुनौती है इराकी शिया बहुमत वाली हुकूमत के लिए। तो एक तरह से जो 2006 से 2008 तक के दौरान जो मॉडल आपको याद होगा डेविड पेट्रेस ने बहाल किया था सुन्नी लड़ाकों को अलकायदा के खिलाफ तैयार करने का, वो कामयाब रहा था और उसी मॉडल को दोहराने की कोशिश हो रही है। कई वरिष्ठ रिपब्लिकन सेनेटर्स जिनमें जॉन मैकेन भी शामिल हैं, तो उन्होंने इस 450 की बढ़ोतरी को सही दिशा में उठाया गया कदम तो कहा है, लेकिन अभी भी एक ठोस रणनीति उनके शब्दों में नहीं दिखाई दे रही है।
इराक पर बदलती अमरीकी रणनीति पर ये थे ब्रजेश उपाध्याय। भारतीय सेना और कई वरिष्ठ मंत्रियों ने हाल ही में म्यांमार में घुसकर कुछ चरमपंथियों को मार गिराने की बातें दोहराई थीं। कुछ बयानों में यह भी कहा गया था कि इस गोपनीय ऑपरेशन की जानकारी म्यांमार सरकार को भी थी। हालांकि समाचार एजेंसी AFP ने देर रात एक खबर में बताया है कि म्यांमार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी जॉह ते ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए यह साफ किया है कि भारतीय सैनिकों की यह कार्रवाई म्यांमार के बजाय भारतीय सीमा में ही हुई और म्यांमार अपनी धरती को किसी भी चरमपंथी गतिविधि के लिए इस्तेमाल होने नहीं देता। बहरहाल, अभी भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन मैंने द ट्रिब्यून अखबार के उप संपादक और विदेश मामलों के जानकार संदीप दीक्षित से बात करके इस कथित बयान के पीछे का सच तलाशने की कोशिश की।
देखिए, इंडियन आर्मी ने तो क्लेम किया है कि वो म्यांमार में गए, और अगर आप उस इलाके को देखें तो वहाँ म्यांमार के लोग 27 किलोमीटर तक इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया के लोग 14 किलोमीटर तक म्यांमार में जा सकते हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल संभव है कि इंडियन आर्मी के कमांडोज उधर गए। और ये कोई छुपी बात नहीं है कि सागाइंग जो कि म्यांमार में एक जगह है उसके आसपास काफी रिबल के कैंप्स हैं, अब वो कैंप्स इसलिए हैं क्योंकि म्यांमार सरकार ने सीज फायर एग्रीमेंट किया था वहाँ के क्योनाक नागा के साथ और 3 सब डिवीजन में उनको खुला घूमने की छूट दी थी। तो जाहिर है म्यांमार जो है ये बैलेंस जो है उसने स्ट्राइक किया है नागा ग्रुप्स के साथ, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा और ये डिनायल शायद उसी की एक कड़ी में से है।
आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, आपने बताया कि कैसे कितने किलोमीटर तक म्यांमार में जा सकते हैं भारत से और भारत में वहां से आ सकते हैं। थोड़ा और बताएं इस बारे में कि आखिर वहां बॉर्डर्स जो हैं वहां पर लाइफ कैसी है, अगर वहां पर इंडियन आर्मी गई होगी, उन्होंने कोवर्ट ऑपरेशन किया होगा तो किस तरह से किया होगा, क्या डिफिकल्टीज हुई होंगी और अब जो डिनाइल आ रहा है उसका उस लोकल इलाके पर क्या असर पड़ेगा?
देखिए डिफिकल्टी तो नहीं हुई होंगी कि पास में मिजोरम है जहाँ की वारांगटे में इंडियन आर्मी की जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग होती है और टेरेन वहाँ की करीब करीब वही है जो म्यांमार में भी टेरेन है और साथ साथ खापलांग जो ग्रुप है उसके खिलाफ बड़े नागा ग्रुप्स हैं, क्लैंस हैं जो आइजा कमुइवा एन एस सी एन के हैं, वो इनके खिलाफ हैं और उनको लग रहा है कि खापलांग जो है उनको अंडरकट कर रहा है। उसकी वजह से इंटेलिजेंस देने में भी कोई कमी नहीं रही होगी और काफ़ी ग्रुप्स ने आके इंडियन आर्मी को ये इंटेलिजेंस दी होगी और ये जो 20 जो मरे सैनिक इंडियन आर्मी के, ये पहला अटैक नहीं था। अगर आप देखें कि जब से सीज फायर कॉल ऑफ की है खापलांग ग्रुप ने, उसके बाद महीने के पहले हफ्ते में अटैक हुए हैं। पहला अटैक अप्रैल में हुआ था अरुणाचल में, दूसरा अटैक मई में मौन नागालैंड में और तीसरा अटैक ये था और तीनों अटैक्स की समानता ये, इसके अलावा कि वो हर महीने के पहले हफ्ते में हुए, समानता ये थी कि हर अटैक जो था म्यांमार से करीब 15-20 किलोमीटर दूर हुआ, यानी कि हर बार ये लोग वापस भाग गए अपने कैंप्स में। तो इस बार इंडियन आर्मी को लगा कि समय आ गया है कि इन कैंप्स को अटैक किया जाए और ये पहली बार अटैक नहीं हुआ है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार संदीप दीक्षित। रुक करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल के कोझीकोड हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी के बीच बुधवार शाम हुए एक हिंसक झगड़े में एक सीआईएसएफ जवान की मौत तक हो गई, जबकि हवाई अड्डे पर काम करने वाले 2 कर्मचारी इस हमले में घायल हुए हैं। हिंसा के चलते हवाई अड्डे को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा और मध्य पूर्व से पहुंचने वाली 2 उड़ानों को कोची भेज दिया गया। घटना के तुरंत बाद केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नितला ने बीबीसी को बताया,
सीएसएफ जवान का गन लेकर के उसको मार दिया, तो इसके वजह से थोड़ा सा क्लैश चल रहे उधर। हमने केरला पुलिस के सारे ज्यादा पर्सनल्स को उधर भेजा है। क्लैश इसलिए हुआ था कि ये सन्नी थॉमस नामक एक एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी के साथ पास के बिना अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब सीएसएफ जवान ने उसको रोक दिया, तो दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा की वजह से वो गुस्सा में गन लेकर के उसको मार दिया।
आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं बेंगलोर से वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी को। इमरान, वजह क्या बताई जा रही है इस घटना की और हालात अब कैसे हैं?
जी, हालात ये हैं कि पहले हालात बोल देते हैं कि हालात अभी नॉर्मल है। हमने इनसे एडीजीपी शंकर रेड्डी से बात की और उन्होंने बताया कि नॉर्मल ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं और करीब 2 बजे के करीब ये बात बताई थी और अभी 8:30 बजे पहला फ्लाइट वहाँ लैंड होने वाला है। कल रात को इस वाक्य के बाद ये क्या वहाँ तलाशी के हो रही थी एयरपोर्ट स्टाफ की, तो एयरपोर्ट स्टाफ ने जैसे चेन्नितला जो गृह मंत्री हैं केरला के, उन्होंने कहा था मुझे कल रात को कि ये एयरपोर्ट स्टाफ वहाँ पास के बिना अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और इससे पहले थोड़ा बहुत टेंशन था दो एयरपोर्ट स्टाफ और सीएसएफ स्टाफ के बीच, क्योंकि वहाँ उनकी तलाशी ली जाती थी और उस पे इनकी एतराजी वो ये कर रहे थे एयरपोर्ट स्टाफ, तो इसलिए ये जो टेंशन चल रहा था वो कल रात को बहुत बढ़ गया और ये कहा जा रहा है कि सनी थॉमस ने जो एयरपोर्ट स्टाफ हैं उन्होंने सीएसएफ की जो जवान का जो जयपाल यादव हैं उनकी रिवॉल्वर लेके उनको मार दी। तो इसके बाद से तो कल रात को 2 फ्लाइट, एक शारजा की फ्लाइट और एक मुंबई की फ्लाइट, दोनों को कोची डाइवर्ट करना पड़ा।
बहुत बहुत शुक्रिया इमरान कुरैशी साहब इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने फर्जी डिग्री मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज एडिशनल सेशन जज उनके मामले पर सुनवाई करेंगे। पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं, जिस पर दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे जवाब भी मांगा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक आरटीआई के हवाले से आम आदमी पार्टी नेता राखी बिरला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सुनिए दिव्या आर की रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को जहां भी पूछताछ के लिए लेकर गई, साथ साथ मीडिया के कैमरे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम भी आता गया। कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बावजूद लखनऊ पहुंचकर भी तोमर ने खुद को बेकसूर बताया और उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया। गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली की अदालत में एक अर्जी भी दाखिल की गई, जिसमें पूरी प्रक्रिया को गैरकानूनी घोषित करने की दरख्वास्त की गई है। पर आम आदमी पार्टी को अभी और परेशानियों का सामना करना था, जब पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका भारती ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया।
It's going on for such a long time. It's a long thing. 2010 से चल रहा है। I want separation. I want out from this marriage. I want to live with dignity with my children.
लिपिका कह रही थी कि वो लंबे समय से अपनी शादी में परेशान हैं और अब वो इससे बाहर निकलना चाहती हैं। लिपिका भारती ने दिल्ली महिला आयोग से शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने सोमनाथ भारती को 26 जून तक जवाब देने का नोटिस भेजा है। पर सोमनाथ भारती इन आरोपों को गलत बताते हैं।
Whatever allegation of domestic violence he has alleged me with, they are all baseless.
उन्होंने मेरे खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं।
बीबीसी से बातचीत में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दिलीप पांडे ने इसे निजी मामला बताया।
हमारा ये मानना है कि पहले तो पार्टी चाहेगी इन दोनों के सुखद भाई जीवन की हम कामना करना चाहेंगे, और दोनों प्रबुद्ध हैं, प्रज्ञ हैं, समझदार हैं। हम यकीन करते हैं कि एक साथ बैठ के शायद ये मामला सुलझा सकते हैं, बजाय इसके कि ये मामला बाहर जाए और मीडिया में इसके ऊपर पब्लिक ट्रायल्स हो। तो एडल्ट के बीच का मसला है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर जो कि जैसा कि मैं मीडिया के जरिए पता चल रहा है, अगर मामला डाइवोर्स का है तो कोर्ट्स हैं, दोनों पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वहां जाके अपना मामला सुलझा सकते हैं।
पर मंगलवार का दिन खत्म होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी पर एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधायक राखी बिरला ने 15,000 रुपए की सोलर स्ट्रीट लाइट 1,00,000 रुपए में और 10,000 रुपए में लगने वाले सीसीटीवी यूनिट मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में लगवाए। उनका आरोप था कि एक पूर्व मंत्री सहित 6 दूसरे विधायकों के क्षेत्रों में भी इसी तरह की हेराफेरी की गई है। आम आदमी पार्टी से इस पर प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
पाकिस्तान में मंगलवार सुबह एक और अपराधी को मृत्युदंड दिया गया था। ईसाई समुदाय से संबंध रखने वाले आफताब बहादुर पर 1992 में लाहौर में एक महिला सहित 3 लोगों की हत्या करने का आरोप था। ताज़ा फांसी ऐसे समय हुई है जब दुनिया भर में आलोचना के बावजूद पाकिस्तान में मौत की सज़ा पर अमल बड़ी तेज़ी से जारी है। पेशावर स्कूल हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने मौत की सज़ा पर से प्रतिबंध उठा दिया था और तब से अब तक 150 से अधिक लोगों को फांसी दी जा चुकी है। बीबीसी उर्दू के सकलेन इमाम ने पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की प्रमुख जोहरा यूसुफ से इन फांसियों पर बात की।
पहले तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो दहशतगर्दी के केसेस में जिनको सजा हुई है उनको दी जाएगी, फिर बाद में उन्होंने जनरल जो केसेस में मर्डर वगैरह के भी उसको भी शामिल किया। तो देखिए 10 ऐसे एग्जीक्यूशन हुए हैं जिनका ताल्लुक मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ हमले के केसेस में उनकी मुलव्वज़ थे, एक GHQ अटैक में और 3 हाईटैकिंग में मुलव्वज़ थे। तो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 14-15 ऐसे केसेस है जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टेररिस्ट में इन्वॉल्व थे। मगर अगर आप हमारे वेबसाइट पे सारी तफसील है तो ज्यादा जो है वो ऑर्डिनरी मर्डर केसेस हैं, जिसमें डकैती के दौरान या पर्सनल दुश्मनी की बुनियाद पर।
اچھا یہ بتائیں کہ جو شدت پسندی کے نام پر یا دہشت گردی کے نام پر جو اب تک پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا, اس پہ ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں, لیکن کیا شدت پسندی یا دہشت گردی کہیں ختم ہوتی کم ہوتی نظر آ رہی؟ کیونکہ اسی دوران ان پھانسیوں کے سلسلے کے دوران ہی حیات آباد کی امام برگاہ پہ حملہ ہوا, شکار پور پر حملہ ہوا, شیعہ اسماعیلی بس پر حملہ ہوا, مستونگ میں پشتونوں پر حملہ ہوا, ہزارہ شیعوں کو مارا گیا, تو کیا مقصد حاصل کیا ہو پا رہا ہے اب تک؟
دیکھیے حکومت کا جو کہنا تھا جب انہوں نے موریٹوریم ہٹایا ہے, یہ ایک طرح سے ڈیٹرنٹ ہوگا کہ جب دہشت گردوں کو پتہ چلے گا کہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہیں, پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے, تو یہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا. مگر بالکل جیسا کہ آپ نے کئی کیسز کا حوالہ دیا, ایسا تو نہیں ہوا ہے, اور بہت سے اس کے بعد نمایاں کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, اور اس کے علاوہ انڈیویجول ٹارگیٹڈ کیسز بھی ہوئے ہیں.
یہ تھی پاکستان مانوادھیکار آیوگ کی پرمکھ زہرا یوسف. اور روز کی طرح اب سمے ہو چکا ہے اخباروں کی سمیکشا کا. فیصل صاحب آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فیصل صاحب, کیا ہے اخباروں کی رنگت؟
اخباروں کی رنگ اور رنگت بس وہی ہے, میانمار اور عام آدمی پارٹی جو آج کل پچھلے دنوں چھائی ہوئی ہے اخباروں پر. اگر عام آدمی پارٹی سے شروعات کرتے ہیں تو جنستہ کی ہیڈ لائن ہے, جو کہ عام آدمی پارٹی میں جو ایک نیا وواد شروع ہوا ہے
جی,
وہ سومناتھ بھارتی جو پرانے قانون منتری تھے, نئے قانون منتری تومر صاحب کو لے کے تو ایک وواد تھا ہی
جی,
ان کی پتنی نے یہ آروپ لگایا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا. تو جنستہ کہتا ہے کہ گھر کی کھڑکی سے نکلی آواز ظلمی ہے سومناتھ. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بڑا اس کو ایک ٹوسٹ دینے کی کوشش کی ہے. اور اب وواد میں بھارتی, یہ نو بھارت ٹائمز کا کہنا ہے, کپل مشرا ہوں گے نئے قانون منتری, یہ بھی کہا گیا ہے ساتھ ساتھ وہ. اور اگر ہندوستان میں کیا کیا گیا ہے کہ دونوں معاملے کو جوڑ دیا گیا ہے, سومناتھ بھارتی اور تومر والے معاملے کو, اور کہا گیا ہے کہ آپ پر چوطرفہ آفت
جی,
یعنی کیجریوال سرکار کو کورٹ سے جھٹکا, ودھائکوں کی پولیس جانچ اور گھریلو جھگڑوں سے کرکری. اور ساتھ ساتھ امر اجالا کی بات کریں تو اس نے باضابطے گرافکس بنا کے دیا ہے تومر کا سچ سے سامنا, جس میں کہا گیا ہے کہ ان کو اودھ یونیورسٹی لے جایا گیا تومر کو, اور وہ اب اودھ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ تومر کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, ان کی ڈگری فرضی ہے. بتایا گیا کہ رول نمبر والی کاپی پر رائٹنگ دوسرے کی تھی, کلاس روم نہیں بتا پایا کہ کہاں کلاسز ہوتے تھے ان کے, اور وہاں کے لوگوں نے بتایا, اسٹاف نے یونیورسٹی کے, کہ وہ تو انہیں پہچانتے نہیں ہیں. اور جب یہ ساری باتیں سامنے آئیں تو انہوں نے اپنی گردن جھکا لی.
یہ تو معاملہ کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے.
جی ہاں, معاملہ کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, اور اس پہ کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں. اور یہ بھی سوال کئی جگہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اروند کیجریوال اس پورے معاملے پر اتنے دن خاموش
کیوں رہے.
اور ہندوستان ٹائمز نے تومر کو کہا, تومر لاسٹ فار ورڈز ان فیض آباد, کہ ان کے پاس کوئی شبد نہیں تھے کوئی جواب دینے کے لیے جس طرح کے سوال ہوئے. ٹائمز آف انڈیا نے سومناتھ بھارتی کا معاملہ اٹھایا کہ سومناتھ بھارتیز وائف کمپلینس آف ڈومیسٹک وائلنس, اس کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ یو پی یونیورسٹی ڈینائز اٹ ایشو ٹومر گریجویشن سرٹیفکیٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل جو ہے اسے انکار کیا ہے, اسی کے نیچے تومر کا معاملہ ہے. اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ میانمار کا, جس کو کہ اگر دیکھیں تو انڈین ایکسپریس نے جو ہے وہ میانمار کے قصے کو آگے بڑھایا. اس نے کہا کہ آرمی اور گورنمنٹ سگنلز واچ دس اسپیس. ایک تو یہ ہے کہ جو سرکشا صلاح کار ہیں وہ راشٹریہ سرکشا صلاح کار میانمار جا رہے ہیں, اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یو ایف ای مشنز جو تھے اس نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے ان کیمپوں کو. اور ٹائمز آف انڈیا بھی جو ہے وہ پاکستان کے معاملے کو جو ہے اٹھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب راجوردھن سنگھ راٹھور, جو کہ یہاں کے سوتنتر جو کہ سوچنا پرسارن راجیہ منتری, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ پاکستان کے سندربھ میں بھی اس طرح کا کر سکتے ہیں, جہاں بھی بھارت کے خلاف جن لوگوں کو پریشر دیا جا رہا ہے یا بھارت کا جو الزام رہا ہے کہ وہاں چرم پنتھیوں کے کیمپ چلتے ہیں, اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف بھی ایسی کارروائی کر سکتے ہیں. اس کے جواب میں پاکستان نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ میانمار, ڈونٹ ٹرائی ٹو ریپیٹ ہیئر, پاکستان نے بہت ہی کڑے لفظوں میں کہا. اور انت میں نیتن ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بھارت کا پہلا لیسبی लेस्बियन ऐड आया है जो कि वायरल हो गया। इसके पहले आपको याद होगा कि समलैंगिकों का एक ऐड आया था जिसमें अय्यर समुदाय के एक समलैंगिक लड़के या लड़की की तलाश थी। इसमें ऐड में जो है इसका नाम विजिट है और एक दो लड़कियां जो हैं अपने माँ बाप के यहाँ जाना चाह रही हैं बताने के लिए कि वो रिश्ता बनाना चाहती हैं, और उसी ऐड को दिखाया गया और ये बहुत हिट हो रहा है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया फैजल साहब इन तमाम जानकारी के लिए। आज की विशेष रिपोर्ट का रुख करते हैं। बॉलीवुड में काम करने की चाहत यूं तो हर एक अभिनेता के दिल में कहीं ना कहीं छिपी रहती है, लेकिन एक मौके की तलाश में कईयों की उम्र बीत जाती है। मुंबई में आने वाले कलाकारों के लिए काम की इसी तलाश को आसान बनाने के लिए शुरू हुआ है एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल जहाँ खुद को बिना किसी कीमत के रजिस्टर करवा कर आप भी बॉलीवुड में काम तलाश रख सकते हैं। कितनी कारगर है ये नई वेबसाइट, ये बता रहे हैं मुंबई से हमारे सहयोगी सुशांत मोहन।
माया नगरी मुंबई में अगर आप नए हैं और यहाँ बॉलीवुड में अपना करियर बनाने की जुगत में हैं, तो आपके लिए ये खबर एक खुशखबरी जैसी हो सकती है। मुंबई के एक फिल्म निर्माता सुनील वोहरा ने ब्रिटेन की एक वेबसाइट कास्टिंग नाउ से प्रेरणा लेकर भारत में एक ऐसी वेबसाइट शुरू की है जहाँ कलाकार अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और फिर निर्माता निर्देशक एक ही जगह से अपने पसंदीदा कलाकारों को चुन सकते हैं। सुनील बताते हैं,
देखिए ऑनलाइन पोर्टल का मेरे को आइडिया तब आया जब लास्ट फ्यू इयर्स लाइक जब हम लोग पिक्चर बना रहे हैं और मुझे लगा कि मेजर एक इशू जिससे हम वो डील कर रहे हैं दैट्स ऑल कास्टिंग, मतलब इफ इट इज डिफिकल्ट टू कास्ट सुपरस्टार अंडरस्टूड, नए लोग भी नहीं मिल पा रहे अच्छे कलाकार अगर हमको चाहिए तो मैंने बोला उसका रीज़न क्या है, तो मैं उसके बारे में बहुत सोचा, लोगों से मिला, पता चला कि एक ब्रिज की बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा टैलेंट अवेलेबल हो सकता है मेरे बाजू वाले घर में हो बट मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो उन लोगों का जो बेस्ट टैलेंट उसे ला रहे हैं उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो कि एक इंटरनेशनल फॉर्मेट पे उनको शूट कर रहे हैं, और शूट पे भी हमने तीन वर्जन रखे हैं, एक कि जो आप अपनी मर्जी का करना चाहते हैं, जो आप अगर कलाकार हैं तो अगर आपको लगे यार ये मैं सबसे अच्छा करना चाहता हूँ तो सबसे बेस्ट पहले उनका शूट करेंगे और दो हमारे वर्जन शूट करेंगे।
बॉम्बे कास्टिंग के नाम से बनाई गई इस वेबसाइट पर अभी तो कुछ गिने चुने नए कलाकारों ने ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन अपनी तस्वीरों और कुछ एक्टिंग वीडियोस के सहारे फिल्मों में मौका तलाशने वालों में से एक हैं छोटे पर्दे पर कई धारावाहिक कर चुकी प्रबलीन संधु। प्रबलीन कहती हैं,
मुझे ऐसा लगता है ये ब्लेसिंग बन के इसीलिए आया है क्योंकि मैं एज एन एक्टर मुझे हो गए यहाँ पे लाइक बॉम्बे में 7-8 साल जैसे भी हो गए हैं, मुझे सही लोगों से मिलना, सही जगह किस टाइम पे कौन सी फिल्म बन रही है वो सब पता नहीं चलता है, तो मेरे लिए इट्स अ ब्लेसिंग बिकॉज अभी जिस तरह से ऑनलाइन इसमें आप अपना ऑडिशन डालेंगे या फिर जैसे मेरा प्रोफाइल होगा इसमें ऑनलाइन, तो जिसको भी कास्ट करना है यू जस्ट हैव टू गो ऑनलाइन और जो प्रोड्यूसर्स होंगे फिल्म के या कास्टिंग डायरेक्टर्स होंगे यू नो दे कैन पिक अप द एक्टर्स, उनको जो लगेगा ये सही है।
लेकिन सिर्फ प्रोफाइल बनाने या एक नए तरीके को आजमाने से आपको फिल्मों में रोल मिल ही जाएगा ये बात साबित नहीं होती, इसीलिए इस नई पहल के बारे में फिल्म निर्देशकों की राय जानने के लिए हमने बात की विभिन्न निर्देशकों से। फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला बना चुके अपूर्व लाखिया कहते हैं,
सर मुझे लगता है ये जो भी ये वेबसाइट पे जाना चाहते हैं उनको देखना चाहिए कि एडवांटेज है या नहीं है, कौन ये वेबसाइट को यूज करने वाला है, कौन कौन से उनके मेंबर्स है, कहाँ कहाँ तक उनकी रीच है, उसके बाद उनको डिसाइड करना चाहिए क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इसमें मेंबरशिप फी कितनी है क्या है, मैंने तो पहली बार सुना, लेकिन there are advantages and disadvantages depends on how you want to play the game ना।
शाहरुख खान की फिल्म रावण के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने बताया,
यार अगर एक ऐसी ये ऐसा डेस्टिनेशन बन गया जहाँ जाके लोग देखते हैं एक्ट्रेस को तलाश करते हैं तो ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगा ना, अगर ये अच्छे से फंक्शन करेगा, इसका डेटाबेस अच्छा होगा, जैसे मुझे आज तक इसका नाम ही नहीं पता था, अच्छे से मार्केट होगा तो ऑब्वियसली सबको फायदा होगा ना।
वरुण धवन के साथ फिल्म बदलापुर बना चुके श्री राम राघवन ने इस पोर्टल के बारे में जानकारी से ही इनकार कर दिया, अगर निर्देशकों की बात पर गौर किया जाए तो इस हिसाब से अभी तो इस ऑनलाइन पोर्टल के लिए ही संघर्ष के दिन है, ऐसे में इस वेबसाइट से नए कलाकारों की स्ट्रगल में कुछ कमी होगी ऐसा कहना जरा जल्दबाजी है। सुशांत मोहन, BBC मुंबई।
और आइए एक बार फिर सुनते हैं प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। भारत की ओर से पाकिस्तान में भी म्यांमार की तर्ज पर फौजी कार्रवाई करने के बयान पर पाकिस्तानी गृहमंत्री चौधरी निसार ने कहा कि भारत को किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान म्यांमार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया कि शांति सेना नियमित रूप से लोगों को सेक्स के लिए मजबूर करती है जिसके बदले वो उन्हें छोटे मोटे सामान मुहैया करवा देती है। पोप फ्रांसिस वेटिकन में एक नया विभाग बनाने जा रहे हैं जो उन मामलों की देखभाल करेगा जिनमें बिशप बाल यौन शोषण के मामलों को रोकने में नाकाम रहे थे। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 450 अतिरिक्त अमरीकी सैनिकों को इराक भेजने की इजाजत दे दी है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज भी स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम साहब। अब से ठीक एक घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नितिन श्रीवास्तव को अनुमति दीजिए।